को चला रहे हैं। किस लिए? अरविंद को प्रसन्न करना। आपको पुनः पुनः
कहते हैं कि यदि कलयुग में और कुछ भी करना भी है तो करो, मना नहीं है, अपने रुचि के अनुसार। जो 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई या 64 उसमें तुम सभी कुछ कर सकते, किंतु याद रखो कलयुग में करने पर भी जद्यपन्या कलौ कर्तव्य तदापि तनाख्या भक्ति संयोग एव ए कर्तव्य। मान्य कि अर्जन करना है, जोग करना है, समाधि भी लगाना है, भगवान का नियम का कीर्तन करते करते करो, इसको जारी रखो। जैसे हमको स्मरण करना है, क्या करो? कीर्तन करते करते करो, कीर्तन को छोड़ करके नहीं, नहीं तो वो फल नहीं देगा। इसमें बतलाएंगे कीर्तन को करते हुए यदि हमको अर्चन भी करना है, क्या करो? अर्चन करते रहो और हरे कृष्ण यार भोग लगा दो और बाहर में बैठ करके भज भक्त तलसी गौर ऐसे इसी तरह से कीर्तन करते रहो। इसलिए कोई भी कार्य है वो करने पर भी कोई भी साधन भजन हो कीर्तन आख्या भक्ति के संयोग से ही करो, क्योंकि एक और भी बात है, योग के लिए, समाधि के लिए, तपस्या के लिए, व्रत के लिए और सबके लिए काल का एक बंधन है, उसमें काल का नियम है। पात्र, देश, काल और पात्र का विचार है, सब समय वो नहीं किया जा सकता है, किंतु भगवान नाम के लिए 24 घंटा में जब कभी भी हो और 12 महीने के किसी काल में किसी भी स्थिति में भगवान का नाम किया जा सकता है। इसके लिए कोई देश, काल, पात्र इत्यादि का कोई विचार नहीं। घर में एक आदमी मर गया, यदि उस समय में आप घर में यज्ञ करने लगे तो सब लोग आपको गाली देंगे, कहे ये पागल हो गया, और उस समय में हरे कृष्ण कह करके रोने लगे तो लोगों को भी सांत्वना मिलेगी और ये भी कहेंगे ये ठीक, उसके लिए अनुचित नहीं कहेंगे। आदमी मरे हुए को व्यक्ति को लेकर के जा रहा है, उस समय में क्या करेगा? उस समय में जब तप, यज्ञ, तो ये सब होगा, किंतु भगवान का नाम करते हुए पीछे से राम नाम सत्य है, हरे कृष्ण का सब लोग बुलाने के लिए आते हैं, महाराज जी आपके लिए थोड़ा सा उनका कल्याण हो जाए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में आधी रात में उठ करके भगवान का नाम कर, ये लड़का बहुत अच्छा तो है, ये आधी रात में सब लोग सो रहे हैं और ये कर रहा है। इस तरह से और कोई भी चीज करो उल्टा फल हो जाएगा।
कहां
जंगल में इधर उधर बैठ अपने घर में अकेले बैठ करके गवाड़ बंद करके हरे कृष्ण उद्वेग क्या हो? इसीलिए कलयुग में यदि और भी कुछ करना है, विशेष करके 9 भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति भी करनी है, तो हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से उसको छोड़ करके मत करो। सुमेधा पंडित हुआ ना, क्या सुमेधा हाँ, उस लोग आसन बढ़ने से नहीं, कृष्ण तेजस्य जोगी हो जो कुछ चाहता है, नहीं चाहता है, सब प्रकार की इच्छा है, कोई भी इच्छा नहीं है, मुक्ति चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, संसार की कामनाएं वासनाएं नहीं है, प्रत्येक अवस्था में वो व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन कर सकता है। ये पारंपरिक हमारी और सब में विचार है, इसमें विचार नहीं है। इसलिए किंतु हरिनाम करते समय 10 प्रकार के नमः अपराधों का विचार ये एक जरूरी, इससे बचने की चेष्टा करो 10 प्रकार के नमः अपराधों से। और नहीं, यदि वैष्णव के अपराध से नहीं डरेंगे हम लोग नमः अपराध से, तो कदापि भी भजन में वो सिद्धि नहीं, बल्कि और लेना का देना पड़ जाएगा, अपराध हो जाएगा। इसलिए 10 प्रकार के नवा अपराधों को ये समझ करके बचना चाहिए। मैं उसका केवल थोड़ा सा मैं कह देता हूँ, बहुत बार हमने समझाया है। पहला, साधु लोगों की निंदा मत करो। साधु निंदा की तो बात क्या, निंदनीय व्यक्ति का भी निंदा मत करो यदि कल्याण चाहते। किसी भी निंदनीय व्यक्ति को निंदा का काम कर रहा हो मत उसकी निंदा करो, नहीं तो निंदा करने से उस व्यक्ति का जितना दुर्गुण है जिसकी निंदा करो वो सब तुम्हारे अंदर में आ जाएंगे, इसलिए नहीं करनी चाहिए। एक छोटी सी लघु कथा है इस विषय में। कोई एक संत पुरुष थे, महात्मा जी, वो कहीं सार में पहुंचे और पहुंच करके अपनी धुनी लगा दी एक बरगद के पेड़ के नीचे, अपना चिमटा गाड़ दिया और वहीं पर कुछ करने लगे, अपना भगवान का नाम काम जैसा हो। तो दो चार दिन वहां रहे, खाने पीने के लिए तो खूब कोई असुविधा नहीं, किंतु पासी में एक बेस्या का घर, लोग बहुत से लोग आते जाते थे। बड़ी बदमाश है, ये कैसे बदमाश है जा रहे हैं, बस अब वो भजन के बदले वही बदमाश और यही सब समय त्रुटि देखने। और वो बेस्या ऊपर से देखती थी, वो हमारा आज सौभाग्य है कि हमारे किसी पूर्व जन्मों के हमारे सौभाग्य से ये महात्मा जी यहाँ पर था, कितने शुद्ध निर्मल इनका चित्त होगा, सब समय भगवान का नाम करते हैं, बस उनकी वो प्रशंसा करती हुई चिंतन करने और इसके दुर्गुणों को देख करके सब समय हाय हाय और गाली गलौज करते हुए कैसी बदमाश है कैसी ये करते रहे। कुछ दिनों के बाद में वो जम के दूटा है महात्मा जी के पास में, समय हो गया पास। तो उन्होंने कहा, अरे हमारे पास में कैसे आए महाराज जी, हम आप ही के लिए हैं, कैसे आए तो आपको अब ले चलना है। कहाँ ले जाना है, नरक में। क्यों का उत्तर पीछे देंगे हम आप ही। अरे हम वो नहीं है, वो है होगी बदमाश, उसको दिखलाने लगे। कहा जी महाराज आप ही हैं वो व्यक्ति, आप दिन रात भजन करने के बदले बस गाली गलौज और उसके अवगुणों को देख रहे थे, इसलिए आपके वो पाप उपस्थित हुए, इसलिए आपको लेने के लिए आए, और उसको नहीं ले जाएगा। अरे वो तो आपका शुभ गुणों का चिंतन करते करते परम धर्मात्मा हो गई, उसकी आयु और लंबी हो गई और वो यहाँ हमारे कंट्रोल के बाहर में चली गई। ऐसे भाई हम वो क्या पर स्वभाव कर्मणी न निंदेत न प्रशंसे। यदि कोई गुण है संसार में उनको भी चिंता मत करो और अगुणों को भी चिंता मत करो, क्योंकि उनका पर स्वभाव जो है वो तुम्हारे अंदर में संक्रमित तो हो जाएंगे और तुमको डुबो देंगे। इसलिए सब समय भगवत चिंतन, महात्माओं का जो विचार है उसका चिंतन, दूसरे की निंदा तो मत करो। इसलिए साधु वैष्णवों की निंदा और शिव इत्यादि जितने भी देवता देवी हैं भगवान के अवतार हैं उनको कृष्ण से अलग मत समझो, अलग मत समझो कि वो अलग शंकर जी भगवान है, हनुमान जी एक भगवान है, दुर्गा जी एक भगवान है और ये सब भगवान है, ऐसी मत कल्पना करो। वो भगवान के की शक्तियां हैं, भगवान से राम और जितने भी अवतार हैं वो कृष्ण ही हैं, ऐसा उनके प्रकाश है। और यदि ऐसा समझेगा जो शंकर जी एक स्वयं भगवान है, राम कृष्ण एक भगवान है, राम एक भगवान है, तो कपरा शिव के नाम को भगवान के नाम से पृथक मत समझो, उनके महात्म इत्यादि को, वो भगवान नाम के महात्म से ही उनका है। शंकर जी भगवान नाम करते हैं और जगत के जीवों को मुक्ति देते हैं, इसलिए उनसे अलग मत समझो। गुरु के प्रति अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, गुरु के प्रति, जो गुरु ही नहीं है उसके अवज्ञा का कोई प्रश्न नहीं है। जो गुरु नहीं है और उसको गुरु मान लिया, कल्पना कर लिया, उसके संबंध में यहाँ पर विचार नहीं है। यहाँ पर विचार है गुरु की योग्यता जिनमें है, साधन भजन करके गुरुत्व को उन्होंने लाभ किया है, कैसे समस्त शास्त्रों के विचार को उन्होंने उपलब्धि की है और भगवान की अनुभूति भी डायरेक्ट उन्होंने की है और संसार के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा महात्मा जो देखते हैं चाहे जहाँ भी रहे जिस रूप में रहे वही गुरु है। और ये गुण नहीं है और कल्पना करके झूठ मूठ को उसमें कर दिया, उन लोगों के लिए ये सब विचार है। इसलिए ऐसे गुरु के प्रति अवज्ञा नहीं होती। जैसे बृहस्पति जी गुरु होते हैं, उस गुरु में की अवज्ञा इन्होंने कर दी इंद्र, कहा जाओ हमारे जैसे वो भी हैं, हम जैसे प्रतिष्ठा चाहते हैं ये भी प्रतिष्ठा चाहते हैं, बस इस ऐसा ही आया भाव और बस झट अपराध होकर के शुकर की जोनी में उनको जन्म ले। वो तो ब्रह्मा जी की कृपा से किसी प्रकार से बच निकले। वेद शास्त्रों की कभी भी निंदा नहीं, वेद उपनिषद शास्त्र पुराण शास्त्र ये सब ठीक है, इसलिए इनकी कभी भी निंदा नहीं होनी चाहिए। हरिनाम का महात्मा जान करके भी, अथवा उसमें अर्थवाद की कल्पना करना, नाम में कोई शक्ति नहीं है बेकार की ये सब लिखा है जो नाम के द्वारा सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं करना। शास्त्रों में जो कुछ बतलाया गया है वो पूरा नहीं बतलाया गया है, वो तो आंशिक है और सभी सत्य है, इसलिए ऐसा नहीं। नाम में अर्थवाद, अर्थवाद माने कल्पना करके ये बतलाया गया जैसे इतनी महिमा है, नाम लेत भव सिंधु सुखानी, ये कभी हो सकता है ये संसार का सिंधु ही तो सुख जाए तो भव सिंधु सुख के पीछे, भव सिंधु माने क्या है जन्म मरण का चक्र, तो ये पहले ये समुद्र नाम से सुख जाए तो अजय हाँ सुख नहीं गया, अगस्त ऋषि लिया और पूरा सुख लिया, ऐसा हो सकता है। भव सिंधु तो लाखों का सुख गया है, इसलिए ये सब कल्पना नहीं है, अर्थवाद नहीं है। नाम के बल पर पाप मत करो, नाम का हम नाम करेंगे और हमारे पाप दूर हो जाएंगे ऐसा मत करो, और से आज से प्रतिज्ञा करो हम कोई भी पाप नहीं करेंगे और नाम करते चलो। हरिनाम के प्रति जिनका आदर नहीं है उनके लिए हरिनाम करने का आदेश, उनको निर्देश मत दो, उनको मत कहो जो हरिनाम करो, पहले हरिनाम के प्रति उनकी श्रद्धा हो और तब फिर उनको मंत्र दे करके। नाम की महिमा सुन करके भी नाम के प्रति प्रीति नहीं हुई, आलस्य प्रमाद इत्यादि के द्वारा लेते हैं, कोई प्रीति नहीं है ये भी एक प्रकार का, इन सब को दूर करके बड़े प्रीति के साथ में करना चाहिए। एक और बात भी उन्होंने यहां पर कह रहा, अपराध होना संभव है नाम अपराध, किंतु वैष्णव लोग अपराध ग्रहण नहीं करते, किंतु वैष्णव की चरण धूली क्षमा नहीं करती सहज ही किसी को, बड़ा कठिन हो जाता है। अब दो ही उपाय हैं उसको छुड़ाने के लिए, पहले जो अपने नाम के प्रति जो तुमने अपराध किया है, वैष्णवों के प्रति शास्त्रों के प्रति जो अपराध किया है उसका फल भोग तुमको करना पड़ेगा, जरूर फल भोगना पड़ेगा, और नहीं एक और उपाय है क्या, जिसके प्रति तुम्हारा अपराध है उनसे हाथ जोड़ करके कहे कैसे, भागवत ने ये दिया गया। आप लोगों ने दक्ष प्रजापति का नाम सुना होगा, उन्होंने शंकर जी को अपना जमाई बनाया, सती की शादी उनके साथ में, किंतु मैं और मेरे के अभिमान में वो मत्त रहते थे, कौन शंकर जी सबसे निराले निर्बल परम भगवत भक्त, उनसे इस सबका कोई मतलब नहीं। वो एक बार कहीं सभा हो रही थी, उस सभा में पहुंचे, वहां पर सब लोग जितने लोग खड़े थे दक्ष प्रजापति को देख करके उनको प्रणाम किया, किंतु ब्रह्मा जी नहीं उठे और ये शंकर नहीं उठे, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र के पुत्र के पुत्र ये सब लगते हैं इसलिए इनका नहीं उठना, किंतु उन्होंने मान लिया ये शंकर हमारा जमाई केवल है स्थूल दृष्टि से, ये उस ब्रह्मा के भी पितामह के पितामह के परपितामह, ये उनके समझ में नहीं आया। शंकर जी तत्व की दृष्टि से ब्रह्मा से भी ऊपर वाले, हजारों जन्मों में ब्रह्मत्व जब लाभ करने के बाद में तो शिव की प्राप्ति होती, इसलिए शंकर को देखा जैसे उम्र में भी छोटे जैसे लग रहे हैं और हमारे जमाई हैं, इसलिए उनको अपना केवल जमाई मान लिया। अजी हमारा अभिनंदन नहीं किया, उतर के खड़ा नहीं हुआ, अभिसंपात किया, बड़ी बड़ी गंदी गालियां, और उनको मन ही मन में उनका प्रत्याग कर दिया। किंतु महत अपराध के, इस महत अपराध के कारण में उनकी कन्या सती ने उनके यज्ञ में जल करके प्राणों को छोड़ दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। और उस यज्ञ में शंकर जी अपनी जटा से एक केश छोड़ करके दिया, तो वही वीरभद्र हुए और उसकी यज्ञ को एकदम समस्त विध्वंस करके और दक्ष का प्रजापति का सिर काट करके आहुति दे दी यज्ञ में। और तो उनके पुरोहित भृगु की दाढ़ी और मूंछ उखाड़ ली, और विश्व वसु इत्यादि थे, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का कुछ कान काट लिया, किसी को कुछ कर दिया, सब लोग वहां से भाग करके खड़े हो गए, यज्ञ को जला फला करके खत्म कर दिया। जो हंस रहे थे ना दांत तोड़ दिया, इस तरह से सबको यथा जो दंड फंड दे करके सबको। अब ये सब लोग विष्णु के शरण में जाकर के उनको लेकर के ब्रह्मा को लेकर के शंकर जी के पास, भाई उसने यज्ञ आरंभ किया था, उसका यज्ञ पूरा होना चाहिए, वो तो मर गया, उसको भी जीवित करना है किसी प्रकार से, ये यज्ञ होने देते ये जगत का ध्वंस हो जाएगा। तो शिव जी झजा, हमको तो उससे कोई भी चिड़ नहीं, वो तो बेकार का अपना ये सब इतना गड़बड़ किया, उसी ने किया, तो जैसा कहिए वैसा कर दें, तो पहले उसको कर दें। अच्छा ठीक है चलो, बस सब लेकर के आए यज्ञ स्थली में, उसका शरीर अभी तक पड़ा हुआ था, जो कोई सामने मिल जाए उसी का सिर ले आओ और उसमें जोड़ दे। तो उसी के घर वाले सब दौड़े तो देखा कि सबसे पहले एक बकरा मिला, लंबी लंबी सिंगे और दाढ़ी, बस उसी को कहा जे जो पहले मिले उसी को ले आना, नहीं तो फिर नहीं काम बनेगा, तो वही मिल गया, तो उसी को ले आए। शंकर जी ने उसका गला काट दिया और उसके गले को लेकर के उसके शरीर में जोड़ दिया और वो जी गया। अब तो दे 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 करने लगा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है उनसे, ये प्रभु आप कहां इतने उच्च विचार वाले, हमने अपराध किया और हमारे अपराधों पर आपने ध्यान नहीं करके हमको जीवन दान कर दिया, सचमुच में मैं बकरा ही हूं, अब मुझको उपलब्धि हो रही है, ये जीवन प्रजाओं को उत्पन्न करने के लिए बस इसी के लिए जीवन नहीं है, ये जीवन तो आत्म उपलब्धि करके अपने आत्मा का जो पूर्ण विषय है वो क्या है, भगवान परमात्मा, उनकी प्राप्ति के लिए था, तो हमने तो इसके लिए नहीं किया, और आपको बेकार किया, आपको तंग किया और आपको तरह तरह से गालियां दी, अपमान किया, उसी का फल ये हमको मिला है कि मैं मारा गया, किंतु आप तो बड़े दयालु हैं, आपके समान दयालु जगत में कोई नहीं, आपने हमारे अपराधों पर कोई भी ख्याल नहीं, सब तरह से क्षमा किया, आज मुझे जीवन भी दान कर दिया, अपनी यज्ञ को पूर्ण करने का अवसर भी दिया, आप प्रसन्न हो, कहते हुए शिव जी मुस्कुराने लग गए। तब उसका अपराध क्षमा हुआ और तब फिर वो समझ बुझ करके तब फिर भगवान के भजन में, फिर उसका ये सुख। इसलिए यदि किसी के पास में कोई भी तनिक भी कोई अपराध हो वैष्णवों के निकट में, वो तो ग्रहण नहीं करते, किंतु यही इसकी चरण धूलि ग्रहण कर लेना है, भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए उनसे जाकर के मीठी मीठी बातों से प्रसन्न उनको करके और उनके अनुगत हो जाने से वो सब क्षमा करें। यदि भजन करना है तो अपराध होंगे, जरूर होंगे किसी न किसी प्रकार, हम तो ना समझें, तत्वों का ज्ञान नहीं है, कैसे उनको सम्मान करना चाहिए, उनका अधिकार क्या है ये भी नहीं समझ में आता, हम समझते हैं कि वो तो मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, बराबर हैं, ऐसा समझ लेते हैं और अपराध कर देते हैं। इसलिए भाई ऐसा मत करो, वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए खूब सावधानी के साथ में उनसे क्षमा, यही दो उपाय हैं, या तो कर्म फल भोगो, तो भोगने में तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे और तभी न जाने क्या होगा, इसलिए वो मार्ग प्रशस्त नहीं है भोगना, दूसरा मार्ग प्रशस्त है, अपना अभिमान तन्मान सब छोड़ करके उस व्यक्ति के प्रति क्षमा मांग करके सहज रूप में फिर तुम्हारा कर। यदि वो नहीं क्षमा करते हैं तो सब समय उसके लिए चेष्टा करते रहो, इधर में अभिशांत नाम लो, अपति अविशांत नाम, तो वो जरूर प्रसन्न हो जाए, और दूसरी बात वो प्रसन्न नहीं होंगे तो समझना चाहिए अब वैष्णव है, ऐसा भी हो सकता है, शुद्ध वैष्णव होंगे तो वो प्रसन्न हो जाए कि तुम्हारे भजन के उन्नत कराने के इच्छा से ऐसा भी सब नहीं क्षमा कर रहे, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सी इसमें बातें हैं ये हमें उन्नत करने के लिए। ऐसा वशिष्ठ जी विश्वामित्र को ब्राह्मण स्वीकार नहीं किया, क्यों? ईर्ष्या से नहीं, देख रहे हैं कि अभी अभी और थोड़ा सा किसी को उंगली पकड़ करके चलाना सिखला रहे हैं। उंगली तब तक पकड़े हैं जब तक कि वो चलना नहीं सीख जाता, उंगली चलना सीख लेगा उंगली छोड़ देंगे। ऐसे ही वशिष्ठ जी उनको एक एक सोपान ऊपर उठाते 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 अंत में क्रोध रह गया था, क्रोध को भी दूर कर दिया। तो फिर उन्होंने कह दिया जैसे उठिए उठिए, उनके चरणों में जब शरणागत हो गए गिर गए लाठी की तरफ लकड़ी की तरफ, अरे उठो उठो ब्रह्मर्षि उठो उठो, गए थे उनको मारने के लिए। और फिर जब देखा जैसे इतने महान है वशिष्ठ, उनकी पत्नी ने कहा जी इसको जल्दी से क्यों नहीं कह देते ये ब्रह्मर्षि, कुटी में बातचीत हो रही है, ये आपको मारने के लिए आपको मार देगा तो आगे से मैं उसको पहले से समझता हूँ ये ब्रह्मर्षि होने योग्य है, अभी हुआ नहीं इसलिए मैं नहीं स्वीकार कर, यदि स्वीकार कर लूंगा तो ये इतने उन्नत मान में नहीं पहुंच सकता है, इसलिए मैं इसके कल्याण के लिए नहीं स्वीकार, इसलिए ऐसे ही होता है। इसके अंदर में अब कीर्तन के लिए बतला रहे, कीर्तन कैसा होना चाहिए, ऐसा गुणों से युक्त होकर के कीर्तन करो। इस कीर्तन में धन्य बोधि का कीर्तन, धन्य जिसमें सूचित हो ऐसे पद, और अपना अभीष्ट निवेदन और अपनी लालसाओं को व्यक्त करते हुए, और अंत में शुद्ध हरे कृष्ण नाम या भगवान का नाम जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा शुद्ध नाम चाहिए। हरिदास ठाकुर जी क्या करते थे, केवल नाम करते थे, और वैष्णव के नाम में भी वो कितनी चीजें हैं, बहुत सब चीजें, भाव के साथ में कीर्तन, अपने अपने भावों के साथ में कीर्तन, अपने सिद्ध से शरीर के अनुरूप कीर्तन, इस तरह से ये होना चाहिए। अब कहते हैं कि देखो श्रवण जो किया ना, नाम कीर्तन करते हुए श्रवण करो और स्मरण करो तो क्या करो, नाम कीर्तन करके ऐसा नहीं जैसे उसको छोड़ दिया, इसलिए श्रवण करते हुए नाम कीर्तन करते हुए स्मरण करो, इस तरह से सिद्धि हो। आज यही तक पंचाकल्प।